हरे कृष्णा, श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 17, टेक्स्ट नंबर 2। इस आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने के लिए, आध्यात्मिक धरातल तक आने के लिए आशीर्वाद की आवश्यकता है। तो पवित्र मन और अविस्तृत बुद्धि के साथ मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः करामहयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलम्, श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गणरघुनाथवितं तं सजीवम्। साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं, श्रीराधा कृष्णपाद सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति, गोपेश गोपी का कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरंगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानो सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद् गीता मात की जय हो। श्लोक नंबर 1 में 16.1 में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य व्यजन्ते श्रद्धयान्विता, के जो शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करते हैं लेकिन बहुत ही श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। अब शास्त्र के विधि विधान क्या है कि देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदि कोई देवी देवताओं की पूजा करता है तो वो मेरी ही पूजा करता है, परंतु वो गलत तरीके से करता है, यजंत्य विधि पूर्वक। भगवान श्री कृष्ण 9.23 में बोलते हैं, ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ति श्रद्धयान्विताः, तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम्। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं की भक्ति करते हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटि पूर्वक करते हैं, मतलब गलत तरीके से करते हैं। अब अर्जुन यहाँ पर यह पूछ रहा है कि फिर भी वो श्रद्धा से तो कर रहे हैं ना, उनकी श्रद्धा शुद्ध सात्विक तो नहीं हो सकती, क्योंकि शुद्ध सात्विक ये है कि जिस भगवान ने आपको बनाया है, जिस देवी देवताओं को बनाया है, पूरे संसार को बनाया, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभु, तो भगवान की भक्ति करना एक मात्र हमारा लक्ष्य होना चाहिए और वही शुद्ध सात्विक गुण में होती है। लेकिन इसके अतिरिक्त हम लोग जो भी कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ कह दिया, यजन्ते श्रद्धान्विता ते भी मामेव कौन्तेय यजन्त अविधि पूर्वक। अब जो काम अविधि पूर्वक हो रहा है उसमें जाहिर सी बात है कोई ना कोई गुण आ रहा है, और कोई भी गुण आएगा तो भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ कह दिया है कि यदि आप किसी भी कार्य, किसी भी गुण में रहकर कार्य करोगे तो डेफिनेटली बंधन में फंसोगे। लेकिन अर्जुन पूछना चाह रहा है कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो बंधन में कैसे फंसेंगे, और कौन कौन से गुण होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण आज अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। भगवान कहते हैं चैप्टर 17 टेक्स्ट नंबर 2, श्री भगवान उवाच, त्रिविधा भवति श्रद्धा, देहिनां सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव, तामसी चेति तां शृणु। भगवान ने कहा त्रिविधा, त्रिविधा का मतलब होता है तीन प्रकार की, तीन टाइप की, भवती मतलब होती है, श्रद्धा यानी कि हर किसी में तीन प्रकार की, श्रद्धा भी तीन प्रकार की होती है, जैसे गुण होते हैं ना उसमें श्रद्धा होती है वो भी तीन प्रकार की होती है, देही नाम यानी देहधारियों, सा वह स्वभावजा प्रकृति के गुणों के अनुसार जैसा जैसा गुण विकसित होता है वैसी वैसी श्रद्धा विकसित होती है, और वो कौन कौन सी होती है, सात्विकी राजसी च एव तामसी, सात्विकी मतलब सत्वगुण वाली, राजसी मतलब रजोगुण वाली, च मतलब भी, एव मतलब निश्चय ही, तामसी यानी कि श्रद्धा, जिस जिस श्रद्धा के साथ, मतलब आप जिस जिस की पूजा कर रहे हो ना उसको देख कर ये पता चलता है कि वो श्रद्धा सात्विक की है, राजसी है, तामसी। क्योंकि अर्जुन का प्रश्न यही था ना कि यदि कोई शास्त्रों की अवहेलना करता है लेकिन श्रद्धा से पूजा करता है तो फिर वो कौन सी, सत्वगुण में है, रजोगुण में या तमोगुण में, तो भगवान कह रहे हैं वो उस चीज को या उस व्यक्ति को या उस देवता को देख के पता चलेगा कि वो जो किसकी पूजा कर रहा है, जब वो पता चल जाएगा ना तो पता चलेगा कि फिर ये राजसी है, तामसी है या सात्विकी है। चेति ताम श्रुणु, लेकिन अभी मैं आपको वो बता दूंगा, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ताम श्रुणु मतलब मैं आपको बताऊंगा तो मुझसे सुनो, श्रुणु का मतलब होता है मेरे से सुनो। श्री भगवान ने कहा देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है, सत्वगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब मुझसे उसके विषय में सुनो। भगवान श्री कृष्ण उस श्रद्धा के विषय में बताना चाह रहे हैं कि जिस जिस की आप पूजा कर रहे हो, अर्जुन का प्रश्न था कि वो श्रद्धा कैसी है, क्या वो हमें मुक्त कराएगी या गुणों में बांध देगी, तो भगवान बोल रहे हैं अभी मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इस श्लोक में तो भगवान ने कहा कि अभी मैं आपको सुना रहा हूँ कि वो तीन टाइप की होती है, मुझसे सुनो। श्री प्रभुपाद जी कहते तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय हो। जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों को जानते हैं लेकिन आलस्य और कार्य विमुक्तावश इनका पालन नहीं करते, वे प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं। श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको शास्त्र के विधि विधानों का पता होता है लेकिन वो फिर भी दो चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से वो काम को नहीं कर पाती। वास्तव में पता है क्या, सबसे बड़ी हमारी नालायकी यही है कि या हम शास्त्रों को जानते, बहुत सारे लोग होते हैं जो शास्त्रों को जानते हैं, उन्हें पता होता है कि हमें सूर्योदय होने से पहले उठना चाहिए, हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, प्रसाद अर्पण करके खाना चाहिए, और भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होते हैं, लेकिन नहीं करते ना, फिर बोलते हैं भगवान की कृपा नहीं है हमारे ऊपर इसलिए नहीं की। वास्तव में कृपा तो भगवान ने उसी दिन दे दी आपको जिस दिन मनुष्य बनाया, क्योंकि मनुष्य को पूरी स्वतंत्रता प्राप्त है कि वो चाहे तो भगवान की भक्ति कर सकता है, यदि उसकी इच्छा हो। भगवान ने साफ साफ कह दिया तुम्हारी जैसी इच्छा है मैं तुम्हारा साथ दूंगा वो कार्य करने में। तो यहाँ पर ये तो अगर कोई बोलता है ना कि मुझ पर भगवान की कृपा नहीं है तो वो पूरा नंबर वन का ढोंगी है, एकदम वो खुद से अपने आप को चीट कर रहा है, अपने आप को चीट करते हुए कह रहा है कि मेरे पे भगवान की कृपा नहीं है। क्योंकि कृपा तो है, दिख रही कृपा कि वो पढ़ सकता है, शास्त्र अध्ययन कर सकता है, वो जब अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए पूरी जिंदगी गुजार सकता है, पूरा दिन खुशी अपने अपने इस हार्ड मास के देह को खुश करने के लिए लगा सकता है, तो भगवान के लिए भी समय अगर निकालना चाहे तो निकाल सकता है। लेकिन यदि नहीं निकालता है तो उसकी दो कारण यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, आलस्य। एक तो वो इतना आलसी होता है, वैसे ये जो कलयुग के लोग हैं ना उनका सबसे बड़ा अवगुण यही है कि आलसी हैं, सोते हैं, सुस्त होते हैं, उनसे भक्ति भक्ति होती नहीं है। कुछ लोग तो मुझे ये बोलते हैं कि मैं सुबह को माला इसलिए नहीं करती हूँ कि सुबह मुझे नहाने में मजा नहीं आता। मैं मतलब इतने आलसी होते हैं कि उनसे ना होती नहीं है भक्ति, ऐसे पवित्रता रखने का भी दिल नहीं करता उनको। एक तो आलस्य है, दूसरा कार्य विमुक्ता, दूसरे इतने कामचोर होते हैं, यानी कि अगर आज काम करने पे भी आएंगे ना तो वो भी सुस्ती, एक तो सुस्ती पहले से, और दूसरा उनको काम करने का दिल ही नहीं करता है, कामचोर होते हैं, और इसलिए वो इन शास्त्र विधि विधानों का पालन नहीं कर पाते। वे प्रकृति के गुणों द्वारा शासित हैं, और जैसे ही वो क्योंकि आलसी हैं, कार्य विमुक्ता है, तो जाहिर सी बात है क्या प्रकृति के गुण उस पर हावी हो जाते हैं। कभी रजोगुण में रहकर कार्य करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा आलस्य ही तमोगुणी है, तो तमोगुण और रजोगुण में रहकर ज्यादातर कार्य करते हैं। वे अपने तमोगुणी रजोगुणी या कभी कभी उनके ऊपर सत्वगुण भी आ जाता है, तो सत्वगुणी पूर्व कर्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं। फिर ऐसे करते करते उनकी नेचर चेंज हो जाती है और एक स्पेशल विशेष जो है ना उनकी नेचर बन जाती है, और वो ऐसे ही स्वभाव के द्वारा कार्य करते हैं। विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगति शाश्वत चलती रहती है। जब से जीव आया है, जब इस प्रकृति के साथ जब से उसका सम्मिलित हुआ है, तब से वो गुणों के साथ भी टच हुआ है, क्योंकि प्रकृति में तीन गुण है, प्रकृति में 24 तत्व मैंने आपको बताया, और जैसे ही वो प्रकृति में आया है उसके साथ साथ गुणों के साथ उसका शाश्वत संबंध चलता रहा है, इटर्नल संबंध है। जब से वो है तब से गुणों के साथ जूझता रहता है, कभी कौन सा गुण हावी हो जाता है, कभी कौन सा ऊपर आ जाता है। चूंकि जीव प्रकृति के संसर्ग में रहता है, अतः वह प्रकृति के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां अर्जित करता है। अब क्योंकि प्रकृति के साथ रह रहा है वो, क्योंकि जीव इस शरीर के अंदर है, यह शरीर ही प्रकृति है और शरीर के अंदर ही गुण भी हैं, तो फिर यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर रहता है, अतएव वह प्रकृति के गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां अर्जित करता है। फिर वो अपने अपने सोच के अनुसार, अपने अपने कल्पना के अनुसार, मनोवृत्ति के अनुसार जो है ना वो कार्य करता है। लेकिन यदि कोई प्रमाणिक गुरु की संगति करता है तो उसकी कथा शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करता है तो उसकी यह मनोवृत्तियां बदल जाती। लेकिन सौभाग्यवश यदि किसी को प्रमाणिक गुरु की सहायता मिल जाती, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इस संसार में करोड़ों करोड़ों जीव हैं और उनमें से कोई एक ब्रह्मांड भ्रमियते कौन भाग्यवान जीव, करोड़ों करोड़ जीव हैं और उनमें से करोड़ों करोड़ जीव जो है वो ब्रह्मांड में फेर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, कभी क्या कार्य कर, कभी कौन सा जन्म मिलता है, कभी कौन सा जन्म मिलता है, और कभी मनुष्य जन्म भी मिलता है, तो इतना संघर्ष उनको करना पड़ता है और ज्यादातर तो निराकारवादी बन जाते हैं, भगवान को मानते ही नहीं है और फिर ना भगवान की भक्ति भी नहीं करते, और फिर कुछ है ना ऐसे होते हैं जो देवी देवताओं की ओर चले जाते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमियते कौन भाग्यवान जीव, उनमें से कोई एक ही भाग्यवान जीव होता है जिसे गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज, जिनको गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता का बीज प्राप्त हो जाता है, भक्ति लता बीज उसको प्राप्त हो जाता है और भगवान की भक्ति करना चाहता है। इसी बात को प्रभुपाद यहाँ पर बताते हैं कि यदि कोई प्रमाणिक गुरु की संगति हासिल कर लेता है, भगवान की कृपा हो जाती है और गुरु की संगति प्राप्त हो जाती है और इसके तथा शास्त्रों की विधि विधानों का पालन करता है तो उसकी यह मनोवृत्तियां बदल जाती है। फिर वो क्या करता है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में कार्य नहीं करता, फिर बंधता नहीं है गुरु के आदेशानुसार, शास्त्रों के आदेशानुसार उसकी मनोवृत्तियां चेंज हो जाती हैं और वो उसी हिसाब से कार्य करता है और शुद्ध सत्व में रहकर कार्य करता है तो फिर वो बंधन में नहीं फंसता है। आगे श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं वह क्रमशः अपनी स्थिति तमोगुण से सत्वगुण या रजोगुण से सत्वगुण में परिवर्तित करता है, यानी कि शुरू में क्या करता है तमोगुण से सत्वगुण में आता है और या फिर अगर रजोगुण में है तो भी सत्वगुण में आ जाता है। अब सत्वगुण में आकर कार्य करता है तो क्या होता है, कहने का तात्पर्य ये है कि प्रकृति के किसी गुण विशेष में अधिक अंधविश्वास करने से ही व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो अंधविश्वास के साथ किसी की भी श्रद्धा के साथ पूजा कर रहा है, किसी की भी कर रहा है भले श्रद्धा के साथ ही कर रहा है। जैसे कल अर्जुन ने पूछा था ना कि यजन्ते श्रद्धयान्विता, वो अगर श्रद्धा के साथ पूजा कर रहा है लेकिन श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं साफ साफ कि वो अंधविश्वास है। अगर आपके अंदर पूरी श्रद्धा हो भी गई है लेकिन अगर वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं हो रही है तो वो अंधविश्वास है। श्री प्रभुपाद ने कहा, कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के किसी गुण विशेष में अंधविश्वास करने से ही व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। सिद्धि क्या है, कृष्ण प्राप्ति, और यदि वो किसी देवी देवता की श्रद्धा के साथ पूजा करता है तो कृष्ण कहते हैं 9.25 में कि यान्ति देवव्रता देवा पितृन्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूते ज्या यान्ति मध्या जिनो सीमा। अगर आप देवताओं की पूजा करोगे देवताओं के पास जाओगे, पितरों की पूजा करोगे पितरों के पास जाओगे, भूतों की पूजा करोगे भूतों के पास जाओगे, मेरी पूजा करोगे मेरे पास आओगे, तो फिर अगर वो श्रद्धा से किसी की भी पूजा कर रहा है भले वो पितरों की कर रहा है कब्रों की कर रहा है देवताओं की कर रहा है तो वो परम सिद्धि को तो प्राप्त नहीं कर सकता। साफ साफ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वह व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। सिद्धि क्या है, कृष्ण को प्राप्त करना। इससे प्रमाणिक गुरु की संगति में रहकर बुद्धिपूर्वक बातों पर विचार करना चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज उसे बताएंगे कि देखो आप किसी की भी श्रद्धा से पूजा कर रहे हो तो आपका रिजल्ट क्या होगा कि आप उस जगह पर जाओगे मतलब लिमिटेड टाइम के लिए, उसके बाद क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति, फिर वापस आपको इस प वर्ग वाली जगह में आना पड़ेगा जहाँ पर कंटिन्यूस तकलीफें हैं, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक तकलीफें हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसमें आना, तो ये सिद्धि कैसे हो सकती है। वो आपके जन्म की सिद्धि तो ये है कि आप समस्त क्लेशों से मुक्त हो जाओ, सारी तकलीफों से अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो ये तो सिद्धि जो है वो केवल आपको प्रमाणिक गुरु की संगति जब मिलेगी और वो आपको जो शास्त्र पूर्वक जो बातें बताएंगे उन पर विचार करने और उनको फॉलो करने से ही आपको वो सिद्धि प्राप्त होगी, तभी वह उच्चतर गुण की स्थिति को प्राप्त कर सकता है और फिर इसी तरह से वो उच्चतर गुण की स्थिति को प्राप्त कर सकता है और वो है शुद्ध सात्विक गुण। वो कब प्राप्त होगा, जब आप प्रमाणिक गुरु की शरण में रहकर उनसे सीखोगे। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चैप्टर 17 टेक्स्ट नंबर 3, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोयं पुरुषो यो यच्छद्दः स एव स। सत्वानुरूपा सर्वस्य, भगवान कहते हैं अस्तित्व के अनुसार, जैसा भी उसका अस्तित्व है, सर्व से यानी सबों की श्रद्धा भवती भारत, श्रद्धा मतलब निष्ठा, भवती मतलब हो जाती है भारत, यानी कि जैसी जैसी आपका स्वरूप है वैसे वैसे आपकी श्रद्धा विकसित हो जाती है। श्रद्धा मयोयम पुरुषोयो, श्रद्धा मतलब श्रद्धा, मय मतलब उस श्रद्धा से युक्त, अयम यह पुरुष जीव आत्मा, यानी जैसे जैसे आपका स्वरूप होगा वैसे आपकी श्रद्धा विकसित हो जाएगी, और वह मनुष्य जैसी श्रद्धा विकसित हो रही है, यत श्रद्धा स एव स, यह मतलब जोश, यत मतलब जिसके होने से, श्रद्धा मतलब श्रद्धा, स एव स निश्चय ही उसी प्रकार कार्य करता है। अब जैसी श्रद्धा उसकी विकसित हो गई उसके हिसाब से वो कार्य करता है। यानी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। यानी कि जो भी गुण उसके ऊपर हावी हो जाते हैं उसके उस स्वरूप के ऊपर, तो फिर वो एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है, और उसके बाद अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार, और जो जो गुण उसने अर्जित किए होंगे उसी के अनुसार जीव विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। और फिर देख के ये पता चलता है, अब अर्जुन का क्वेश्चन ही ऐसा है कि वो श्रद्धा से अगर कार्य कर रहा है तो फिर वो सत्वगुणी है या रजोगुणी है या तमोगुणी है। तो भगवान बता रहे हैं कि देखो, तुम्हारे अंदर जैसा गुण होगा उसी को तुम चुनोगे, उसी हिसाब से तुम श्रद्धा विकसित करोगे, और जिसको तुमने चुना है भक्ति करने के लिए या श्रद्धा अपनी अर्जित करने के लिए, जिसको भी चुना है, तो उसी को आप उसी सा अपने गुण के अनुसार उसकी पूजा करते हो, और वे अपने द्वारा अर्जित गुण के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। फिर ही पता चलता है कि वो कौन सी श्रद्धा में रहकर कार्य कर रहा है। भगवान इस पूरे चैप्टर में बताएंगे कि हर चीज गुण किस किस तरह से, आप ये तीन गुण है ना, वो प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार ही आपका खाना पीना, श्रद्धा से भक्ति करना, हर चीज इन गुणों के अनुसार है। तो आज तो अभी चैतन्य भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो जो विकसित गुण करेंगे उसके अनुसार ही आपको आपकी श्रद्धा को बताया जाएगा कि वो ऐसी श्रद्धा है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की जय हो। प्रत्येक व्यक्ति में चाहे वो जैसा भी हो एक विशेष प्रकार की श्रद्धा पाई जाती है, लेकिन उसके द्वारा अर्जित स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा तमः उत्तम यानी सत्वगुणी, राजस्य रजोगुणी अथवा तामस यानी तमोगुणी कहलाती है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं श्रद्धा हर किसी के अंदर होती है। हर कोई जो भी इंसान है, जो भी मनुष्य है, जो भी जीव मात्र है, उसकी किसी न किसी के अंदर श्रद्धा होती है। लेकिन जैसा किसी की सत्वगुणी होती है, उत्तम होती है, किसी की राजसी होती है, किसी की तामसी होती है, इस प्रकार अपनी विशेष प्रकार की श्रद्धा के अनुसार ही वह कतिपय लोगों की संगति करता है। और जो जो श्रद्धा उसने विकसित की हुई है तो फिर वो ऐसे ही ग्रुप में चला जाता है कि भाई मुझे इसकी भक्ति करनी, क्योंकि श्रद्धा जैसी आपने विकसित की है। और श्रद्धा कैसे विकसित हो रही है, जो गुण आपके ऊपर हावी हो रहा है उसके हिसाब से आप श्रद्धा विकसित कर रहे हो। अब क्योंकि आपने किसी भक्त की संगति की नहीं है, क्योंकि सबसे पहले आपके अंदर शुद्ध सात्विक गुण कैसे आएगा, जब आप किसी शुद्ध भक्त का संग करोगे। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, आप जैसे संग करोगे वैसे ही आपके अंदर रंग लगेगा। तो अगर आपने नहीं किया है तो फिर गुणों के अनुसार जैसा आपका मतलब वातावरण आपको मिला है उसके अनुसार आपकी श्रद्धा भी विकसित होती जाती है, और फिर ऐसे ही लोगों का आप संग ढूंढते हो। अब वास्तविक तथ्य तो यह है कि जैसा 15वें अध्याय में कहा गया है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतएव वह मूलतः इन समस्त गुणों से परे होता है। अब यहाँ पर श्री रूपा जी एक बात क्लियर कर रहे हैं कि जैसा कि 15.7 में भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को क्लियर कहा, भगवान ने कहा मामेव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, कि जितने भी जीव हैं वो मेरे अंश हैं। अब भगवान के अंश हैं तो भगवान के ऊपर तो प्रकृति के गुण है ना असर नहीं करते हैं, इसीलिए मूलतः समस्त गुणों से परे, इसीलिए हम भी जीव आत्माएं, और आत्माएं जो हैं वो भगवान का अंश होने के कारण शुद्ध हैं, वो गुणों से ढकी हुई नहीं है, गुणों गुण मूलतः समस्त गुणों से परे हैं, लेकिन जब वह भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है, जब विस्मृति हो जाती है, जब उसे याद नहीं रहता है कि मैं यह आत्मा हूँ, देहात्म बुद्धि में वो आ जाता है, अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है, तो और बद्ध जीव में भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आ जाता है। और फिर अब भौतिक प्रकृति का संसर्ग हो गया तो वह विभिन्न प्रकार की प्रकृति के साथ संगति करके अपना स्थान बना देता है, यानी कि फिर अब जैसी प्रकृति उसको मिली है, जैसा शरीर मिला है, वैसी संगति उसको मिलती है और वैसा ही वो अपना स्थान बना देता है। इस प्रकार से प्राप्त, यानी जब इस तरह से उसको कोई प्राप्त होती है श्रद्धा, नकली श्रद्धा, यहाँ पर लिखा हुआ है कृत्रिम श्रद्धा, में ये कोई श्रद्धा ही नहीं है। वास्तविक श्रद्धा क्या है? शास्त्र कहता है कि आप जीव आत्मा हो जो कि परमात्मा का अंश है, तो आपका एकमात्र लक्ष्य उसी परमात्मा की भक्ति करना है, क्योंकि अंश का कार्य ही पूर्ण की सेवा करना है, अंश का और कोई कार्य हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर साफ साफ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं बाकी जितनी भी श्रद्धा है वो कृत्रिम है, वो नकली है, तथा अस्तित्व मात्र भौतिक होता है। अब जो अस्तित्व है आपका, जो आप जो प्रकृति है, वो तो भौतिक है, भले ही कोई किसी धारणा या देहात्म बुद्धि द्वारा प्रेरित हो, लेकिन मूलतः वो निर्गुण या दिव्य होता है। अब यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट बात श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं। मुझे अक्सर लोग बोलते हैं कि हम शिविज्म में हैं, हम माता के मानने वाले हैं, हम इसके मानने वाले हैं, हम उसके मानने वाले हैं, हम भगवान की भक्ति, मतलब हम कैसे छोड़ दें, हमारा इष्ट है वो कैसे छोड़ दें? कैसे छोड़ दें क्या मतलब है? आप भगवान के अंश हो, आपका अस्तित्व भगवान के कारण है, और अंश का एकमात्र कार्य है भगवान की सेवा करना। इसके यदि अतिरिक्त यदि आप कुछ कर रहे हो तो वो ठीक नहीं है, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, वरना वो आपको बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसाएगा। तो यहाँ पर साफ साफ कह रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि पहले लगा हुआ तो है किसी में, किसी ने में तो लगा हुआ है, कहीं ना कहीं तो श्रद्धा विकसित की हुई, लेकिन भगवान साफ साफ कह रहे हैं कि वो श्रद्धा या तो सत्वगुणी होगी या रजोगुणी होगी या तमोगुणी होगी, और चाहे कोई भी गुणी होगी तो वो आपको फंसाएगी, आपको उससे निकलना पड़ेगा। यदि आप अपने जीवन का कल्याण चाहते हो, भगवान ने पहले ही बता दिया 16.23 में, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारकात् न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गतिम। अगर आप शास्त्र को नहीं मानते, शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है ममई वंश जीवलोके जीवभूत सनातन, के मेरे अंश है, तो अंश का मतलब है पूर्ण की सेवा करना। यदि आप वो नहीं कर रहे हो तो किसी की भी कर रहे हो तो वो कोई ना कोई गुण के अंदर रहकर कर रहे हो, और वो न सिद्धिम न वापनोती न सुखम न परम, न उससे आपको सिद्धि मिलेगी, न सुख मिलेगा, और न ही परम गति मिलेगी। इसीलिए यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भले ही कोई किसी भी धारणा या देहात्म बुद्धि द्वारा प्रेरित हो, लेकिन मूलतः निर्गुण है, उसके अंदर जो आत्मा है वो किसी भी गुण से बड़ी हुई नहीं है, वो दिव्य है। अतएव भगवान के साथ अपना संबंध फिर से प्राप्त करने के लिए उसे भौतिक कलमश से शुद्ध होना पड़ता है। अब वो अगर चाहता है कि मैं फिर से अपने उस शाश्वत संबंध को प्राप्त करूं, तो इस भौतिक कलमश यानी गुणों से उसको ऊपर उठना पड़ेगा। और यही एकमात्र मार्ग है, इसके अतिरिक्त श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं और कोई मार्ग है ही नहीं, आपको इन गुणों से तो ऊपर उठना पड़ेगा। निर्भय होकर कृष्ण भावनामृत में लौटने का, यदि यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतना टाइम तक कोई और की भक्ति कर रहा था तो अब मैं कैसे उसको छोड़कर भगवान की भक्ति करूं। तो श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं आपको निर्भय होकर आना चाहिए, क्योंकि भगवान ने बताया है कि समस्त धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, मैं तुम्हें समस्त सिद्धि प्राप्त कराऊंगा, तुम्हें डरने माशुच, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर भी श्री प्रभुपाद जी इसी बात को याद कराते हैं कि वो इन समस्त नकली श्रद्धाओं को खत्म करे, अपनी देहात्म बुद्धि को खत्म करे, क्योंकि वो मूल तरह निर्गुण है, और भगवान के साथ अपना संबंध फिर से स्थापित करे इन गुणों को खत्म करके, और उसको कोई डरने की भी जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट से निर्भय होकर कृष्ण भावनामृत को ज्वाइन कर सकता है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित हो तो उसका सिद्धि प्राप्त करने के लिए वह मार्ग प्रशस्त हो जाता है। अब वो अगर वो इस स्टेज पर आ जाता है, यानी उसे पता चल जाता है कि वो भगवान का अंश है और भगवान की सेवा करना उसके जीवन का लक्ष्य है, तो क्या होता है? तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, यदि कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाता है तो उसका सिद्धि प्राप्त करने के लिए वह मार्ग पर है। अब वो सिद्धि प्राप्त कर सकता है जब तक वो इस पॉइंट तक नहीं आता है। बाकी भले किसी की भी भक्ति कर रहा है, उससे बारंबार जन्म मृत्यु का चक्कर ही पड़ेगा, तो उससे निकलना पड़ेगा और निर्भय होकर निकलना पड़ेगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने जब इंद्र की पूजा करते थे ना गोकुलवासी, तो भगवान ने उनको साफ साफ कह दिया कि ये नहीं करनी है आपको। अब वो कितने अरसे से इंद्र की पूजा कर रहे थे, लेकिन भगवान ने साफ कह दिया, क्योंकि भगवान दिखाना चाहते थे कि आप किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हो तो वो रॉन्ग कर रहे हो, आपको नहीं करनी चाहिए। और अगर वो आप अभी देवता देवी देवता अगर कोई कोप करते हैं तो भगवान के ऊपर हमें विश्वास होना चाहिए, उनकी रक्षा की तो आज हमारी रक्षा नहीं करेंगे। कितने बेवकूफी है अगर ये सोचे हम कि उस टाइम पर तो भगवान स्वयं थे और अभी अभी क्या विग्रह रूप में नहीं है, नाम रूप में नहीं है, वो अभी हमारी सहायता नहीं करेंगे। और ये भी जान लीजिए कि जितनी हमारी श्रद्धा होगी उतनी ही श्रद्धा हम विकसित करेंगे और उतना ही भगवान हमारा साथ देंगे। तो यदि हमें भगवान के ऊपर 100% श्रद्धा है तो छोड़े ना दूसरी सारी चीजों को, भगवान की भक्ति में आए, तभी हम अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। यदि वह आत्म साक्षात्कार के इस पद को ग्रहण नहीं करता है तो वह निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों के साथ बंध जाता है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर मुक्त होना है तो फिर आपको कृष्ण भावनामृत में आना पड़ेगा, वरना तो प्रकृति के साथ बंध जाओगे। इस श्लोक में श्रद्धा शब्द अत्यंत ही सार्थक है, त्रिविधा भवती श्रद्धा। तो श्रभुपा जी बोलते हैं, जो श्रद्धा, वास्तव में श्रद्धा शब्द बहुत सार्थक है। यह श्रद्धा ही एकमात्र एक ऐसी चीज है जो आपके पास अपनी विकसित करनी है, मतलब इसको खुद से आपको लगाना है, आपकी विश है, आप जिसमें इसकी अपनी श्रद्धा को लगाओ। ये श्रद्धा जो है ना वो सबसे बड़ा खजाना है। ये श्रद्धा जो है वो विग्रह को भगवान बनने पर मजबूर कर देती है। ये श्रद्धा जो है वो आपके इष्ट को आपसे प्रेम करने पर मजबूर कर देती है। यह श्रद्धा है जो आपको आपके भगवान से मिला देती है। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, श्रद्धा शब्द जो है वो अत्यंत सात्विक है। श्रद्धा मूलतः सत्वगुण से उत्पन्न होती है, वैसे स्टार्ट सत्वगुण से होती है। मनुष्य की श्रद्धा किसी देवता, किसी कृत्रिम ईश्वर या मनोधर्म में हो सकती है, लेकिन प्रबल श्रद्धा सात्विक कार्यों से उत्पन्न होती है। किंतु भौतिक बद्ध जीव में कोई भी कार्य पूर्णतया शुद्ध नहीं होता है, वे सब मिश्रित होते हैं। श्री प्रभुपाद जी बोलते वास्तविक श्रद्धा तो किससे उत्पन्न होती है, सत्वगुण में होती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस सत्व उस श्रद्धा को जब वो विकसित कर देता है, शुरू में तो उसकी श्रद्धा सात्विक होती है और वो देवताओं की या किसी भी मनुष्य की या मनोधर्म में किसी की भी पूजा करना शुरू कर देता है, लेकिन प्रॉब्लम है कि भौतिक बद्ध जीव में कोई भी कार्य पूर्णतः शुद्ध नहीं होता। फिर जो कोई भी आप कार्य कर रहे हो, देवताओं के पास आप जा रहे हो, वो श्रद्धा जब फर्स्ट टाइम आपने विकसित की ना, वो सत्वगुण में थी, लेकिन वहां पर जाके आपने मांगना शुरू कर दिया, मुझे ये चाहिए, तो वो सत्वगुण किसमें चेंज हो गया, रजोगुण में चेंज हो गया। तो यहाँ पर बताया वो पूर्णतः शुद्ध नहीं हो सकता, आपको एक गुण में रहकर कंटिन्यूस कार्य नहीं कर सकते, मिश्रित होते हैं। कभी कभी उसी सत्वगुण में भी आप कार्य करते हो तो रजोगुण जैसे आ गया ना, और कभी कभी तमोगुण भी आ जाता है। कुछ लोग है ना शिव जी की भक्ति करते हैं और फिर वो है ना गांजा पीते हैं या फिर है ना भंग धातुरा इस तरह की चीजों का सेवन करते हैं तो तमोगुण उन पे हावी हो जाता है। वे शुद्ध सात्विक नहीं हो सकते, वो कभी भी शुद्ध सात्विक स्थिति तक नहीं पहुंच सकते। और श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, शुद्ध सत्व जो है वो दिव्य गुण होता है। शुद्ध सत्व में रहकर मनुष्य भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है, जो भगवान का रियल स्वभाव है। और किस तरह की श्रद्धा आपको विकसित करनी है भगवान की भक्ति करने के लिए, वो आप किस में कर सकते हो, जब आपके अंदर शुद्ध सात्विक गुण आता है। और जब तक श्रद्धा पूर्णतया शुद्ध सात्विक नहीं होती है तब तक वह प्रकृति के किसी भी गुण से दूषित हो जाती है, फिर वो प्रकृति में आ जाती है। और साफ साफ पहले ही बता दिया भगवान ने कि आप किसी भी गुण में कार्य करके कर रहे हो, चाहे सत्वगुण में हो तो सत्वगुण संजात, सत्वगुण आपको है ना पुण्य कर्म में बांधेगा, रजो संजात कामा, आपको रजोगुण जो है वो काम ऐसे सकाम कर्मों में बांधेगा और तमोगुण आपको सुस्ती वगैरह में बांधेगा। तो जो भी श्रद्धा होगी वो सत्वगुणी रजोगुणी या तमोगुणी होगी। श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रकृति के जो गुण हैं उससे दूषित होकर, यानी प्रकृति के गुणों से दूषित गुण हृदय तक फैल जाते हैं, अतएव किसी विशेष गुण के संपर्क में रहकर हृदय जिस स्थिति में होता है उसी के अनुसार श्रद्धा स्थापित करता है। यानी कि जैसे भी गुण आपके हृदय में आते हैं उसी के हिसाब से आपकी श्रद्धा विकसित होती है। यह समझना चाहिए कि यदि किसी का हृदय सत्वगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा भी सत्वगुणी है। अब आपके हृदय के भाव के बारे में श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। यहाँ पर भगवान से अर्जुन ने पूछा है कि उसकी श्रद्धा कैसी है, तो श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं आपके हृदय के भाव से पता चलता है कि आपकी कैसी श्रद्धा। यदि हृदय का भाव सत्वगुणी है तो श्रद्धा सत्वगुणी है, और यदि उसके बाद स्थित है तो उसकी श्रद्धा सत्वगुणी तमोगुणी है। यदि हृदय का भाव तमोगुणी है तो श्रद्धा भी तमोगुणी होती है। इस प्रकार हमें संसार में विभिन्न प्रकार की श्रद्धाएं मिलती हैं और विभिन्न प्रकार की श्रद्धाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं। अब जैसी जैसी श्रद्धा आपके हृदय में जैसा जैसा भाव आ गया, क्योंकि शास्त्र को तो फॉलो कर ही नहीं रहे हैं, भगवान की भक्ति तो कर ही नहीं रहे हैं जो शुद्ध सत्व तक पहुंच सके, अब जैसी जैसी श्रद्धा होगी उन्हीं श्रद्धाओं के अनुसार आप कोई धर्म बना लेते हो अपना कि ये मेरा धर्म है, अभी मुझे इसकी भक्ति करनी है, इसकी पूजा करनी है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे भूत पर रहते हो, चाहे कोई कब्र पे जाकर करते हैं, मजारों पे जाके करते हैं। धार्मिक श्रद्धा का असली सिद्धांत सत्वगुण में स्थित होता है, लेकिन चूंकि हृदय कलुषित होता है अतएव विभिन्न प्रकार के धार्मिक सिद्धांत पाए जाते हैं। वास्तव में तो सत्वगुण होता है लेकिन हृदय के अंदर मलिनता है, तो फिर जैसे जैसे आपके हृदय के अंदर भाव होते हैं उसी हिसाब से विभिन्न प्रकार के धार्मिक सिद्धांत आप लोग, आप जो भी मनुष्य होते हैं वो बना लेते हैं कोई ना कोई धार्मिक सिद्धांत कि भाई मेरी भक्ति ये है, कोई ना कोई भक्ति, कोई ना कोई श्रद्धा को रूप दे देते हैं भक्ति का कि भाई ये भक्ति है मेरे, और इतना उसको अच्छे तरीके से करते हैं कि हम भी देख के हैरान हो जाते हैं कि क्या कितने अच्छे तरीके से भक्ति कर रहा है, भले किसी की भी कर रहा है, श्रद्धा तो बहुत सुपर है इसकी। तो श्रद्धा की विभिन्नता के कारण ही पूजा की, पूजा भी विभिन्न प्रकार की होती है। फिर जैसी जैसी श्रद्धा वह विकसित करता है उसी हिसाब से पूजा करता है, और डिफरेंट टाइप की वो पूजा करता है, अलग अलग लोगों के पास जाता है। भगवान श्री कृष्ण कल हमें ये बताएंगे कि कौन सी श्रद्धा के अंदर, अब श्रद्धा कैसे विकसित हुई, गुण जो भी हावी हो गया क्योंकि आपने किसी प्रमाणिक गुरु की तो शरण ली नहीं, शास्त्र की तो शरण ही नहीं, गुरु साधु और शास्त्र के बगैर कभी कल्याण हो नहीं सकता। तो आप जैसे प्रकृति ने आप जिस गुण ने आपके ऊपर हमला किया आपने वैसी श्रद्धा विकसित कर ली और उसी हिसाब से आप पूजा करना शुरू कर देते हो, वो श्रद्धा वो किसी की भी भक्ति होती है, वो आपको अच्छी जगह पर ले जा सकती है, खराब जगह पर भी ले जा सकती है, यानी कि अधोगति में भी ले जा सकती है, ऊपर के लोकों में भी ले जा सकती है, लेकिन वो आपको सिद्धि परम गति और परम सुख कभी नहीं दे सकती। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।